ओम शांति। एक बहुत अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज। हम अपने को जितनी वैल्यू देते हैं उतनी ही वैल्यू दूसरे भी हमें देते हैं। बहुत ही ये सूक्ष्म बात है। हम अपने को कितनी वैल्यू देते हैं और अपने को वैल्यू देने का आधार है हमें कौन सी श्रेष्ठ स्मृति अपने बारे में रहती है, कौन सा श्रेष्ठ स्वमान हमारे चित्त पर छाया रहता है। भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। तो क्या है हम, चार पांच चीजें याद करेंगे जो हमें स्वयं को स्वीकार करा के अपने को वैसी ही वैल्यू देनी है। सबसे बड़ी बात करेंगे पहले, कौन है हम? पूर्वज। छोटे नहीं, तो पूर्वजों के विचार भी महान। उनका एक एक विचार सबकी पालना करने वाला होगा। ये स्वयं को वैल्यू देना है। दूसरा बोलो, कन्याएं बोले, वैल्यू देनी है अपने को। हमारा जीवन साधारण नहीं है, कलयुगी मनुष्यों जैसा भी नहीं है। विशेष अंडरलाइन करें सब, हमारा जीवन कलयुगी मनुष्यों जैसा नहीं है कि हम उन्हें कॉपी करें, वो कॉपी हमें करेंगे या हम उन्हें। महेश, वो हमें करेंगे ना, आदर्श सिंपल एग्जाम्पल हम हैं। दूसरा, अपने को वैल्यू दें, मैं बहुत बहुत महान हूं। कहने तक न रह जाए मैं महान आत्मा हूं, गहराई में उतर जाए मैं बहुत महान हूं, मानताएं आ जाएंगी। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कौन सी, बोलो प्रभावन, सबसे बड़ी, मैं बाप समान हूं। दृष्टि बदल जाए, जैसे बाबा की दृष्टि सबके लिए कैसी है विचार करें, जो उनको गाली देते उनके लिए भी, आज भी बाबा था ना, बाबा का था, मैं निष्कामी हूं और परोपकारी हूं। जिन भारतवासियों ने मेरी बहुत ग्लानी की, पहले उन पर उपकार करता हूं। हमें तो पता नहीं ना हमने ग्लानी की, हम तो बड़े खुशी से गाते थे, जिधर देखता हूं तू ही तू है, बड़ी मस्ती से गीत गाते थे, तेरा ही नजारा दिखता है पंकज, तेरे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता हमें। लेकिन रियलिटी तो नहीं थी ना, वो भी दिखाई नहीं दिया, खुद भी दिखाई नहीं दिए, पुण्य कर्म भी दिखाई नहीं दिए, कुछ दिखा नहीं। तो हम बाप समान हैं, जरा इस पे काम करेंगे अभी। प्रताप भाई, डीपली चले इस फीलिंग में, मैं बाप समान हूं। पांच सात बातें इसकी प्रैक्टिस में लाएंगे। तो हम अपने को बाप समान समझेंगे तो दूसरे भी हमें उसी स्वरूप में देखने लगेंगे। पांच पावरफुल बातें निकालने, एक मैंने बताई है, बाबा की जैसी दृष्टि सबके लिए है, सब धर्मों की आत्माओं के लिए है, प्यार और सुभावनाएं हैं वैसी ही हमारी भी होनी चाहिए। दूसरा, दो मैं बताता हूं फिर आप चिंतन करेंगे। बाबा जिस तरह साक्षी दृष्टा है, हमें भी साक्षी भाव बहुत बढ़ा देना है। बोलो अब आगे की बात। कल्याणकारी बाबा जैसा कल्याणकारी, हम भी वैसे ही कल्याणकारी। और आगे चलो, पालन करने वाला, बहुत अच्छी बात है ये भी। बाबा सबकी पालना करने वाले हैं। देखो अभी भी आते हैं, मुरली नहीं चलाते, लेकिन पालना बहुत अच्छी करते हैं। सभी आनंदित होकर यहाँ से जाते हैं और निष्काम सेवाधारी। ये तो और भी बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि सेवा करने वालों में यदि निष्काम भाव आ जाए तो वो सेवा बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है, बहुत बड़ा। और सेवा में जब स्वार्थ रहता है तो पुण्य खत्म होते जाते हैं। तो मैं बाप समान हूं, अपनी ऊंचाई को बढ़ाते चले। इसका प्रभाव आप देखेंगे कैसा होता है, जो गृहस्थ में रहते हैं उनको भी दिखाई देगा कि अगर हम इस गुड फीलिंग में रहते हैं तो हमारी मनोस्थिति कितनी सुंदर, उसका घर पर, बच्चों पर, काम धंधों पर कैसे सुंदर प्रभाव होता है। आज मेरे मन में संकल्प है, एक हमें अपने योग को बहुत सहज, बड़ा आनंदकारी, बहुत सुखकारी बना देना है। सभी इस बात पे विचार करेंगे तो क्या विधि हम अपनाएं? लंबी चौड़ी बात नहीं, हम थोड़ी सी बात करेंगे केवल। हम क्या विधि अपनाएं और कब अपनाएं जो हमारा योग सुखदायी हो जाए, योग करने में लगे आत्मा बहुत गहरे अतिंद्रिय सुख का रस चखने लगी है। सोने से पहले पांच स्वरूपों का अभ्यास, जो ग्रुप के हैं वो तो सब पांच स्वरूपों को जानते हैं, पर कई नए भाई बहने पांच स्वरूपों के बारे में अनभिज्ञ हैं। सेंटरों पे ये चर्चाएं बहुत कम होती हैं, टाइम नहीं होता, सबको भागे भागे आते हैं मुरली सुनने, सुनते भाग लेते हैं, छुट्टी का दिन अपने काम के लिए रखते हैं। पहला स्वरूप आत्मा, और इसको ऐसे करेंगे, एक बाबा की मुरली इन पांचों स्वरूपों पर बहुत अच्छी चली है, तो बाबा ऐसे कह रहे थे कि अपने सभी स्वरूपों को अपने सामने देखो। एक तो है मैं आत्मा यहाँ हूँ, दूसरा मैं आत्मा सामने हूँ, कैसी हूँ मैं उसको पिक्चराइज करो, चित्र बना दो, वो आत्मा मैं हूँ यहाँ, फिर ये अभ्यास करेंगे। तो पहले अपने पांचों स्वरूपों को अपने सामने देखते हुए उन पर चिंतन करेंगे। चिंतन आवश्यक है, चिंतन के बाद, चिंतन के बिना संकल्प शांत नहीं होते। जितना जिसका सुंदर चिंतन आत्मा के बारे में, जैसे मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, सामने देखो मुझसे किरणें फैल रही हैं और ये प्रकाश की किरणें संसार से अंधकार को दूर करती हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, सामने बिल्कुल मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही हैं और ये शक्तियों की किरणें माया के जर्म्स को नष्ट करती हैं। सुंदर संकल्प, ये मैं हूँ। फिर अपने को यहाँ देखें, यहां तो रोज ही देखते हैं, सामने देखेंगे अपना देव स्वरूप, दूसरा स्वरूप आदि स्वरूप, ये अनादि दूसरा आदि, अपने देव स्वरूप का भी चित्र बनाए और सामने खड़ा कर दे उसको, ये मैं हूं। जितना कोई डिवाइन उसको बना सके, कंचन काया चमकते चेहरे तेजस्वी चेहरे। सच तो ये है कि उस जीवन की यहां कोई कल्पना भी नहीं कर पाता, वो इतना दिव्य है। सामने देखेंगे, सिर पे डबल ताज है, प्रकाश का ताज भी घूम रहा है चारों ओर, और जैसे शरीर के अंग अंग से भी गोल्डन प्रकाश फैलता है, फैलेगा ही वहां, वो दिखेगा नहीं, ये मैं हूं। उसके बारे में भी सुंदर संकल्प करें, सर्वगुण संपन्न हूं, सोलह कला संपूर्ण हूं, संपूर्ण पावन हूं, भरपूर हूं, सुख शांति धन संपदा सबसे भरपूर प्रकृति का मालिक हूं, अथा सुख शांति संपदा है, ये मैं हूं। फिर जब ये अभ्यास अच्छा हो जाए, अपना ही वो स्वरूप देखें, ये मेरा स्वरूप है। तीसरा बोलो, अब तो बोले, पूज्य स्वरूप, अपना एक पूज्य स्वरूप भी निश्चित कर ले। निश्चित करने से ही अच्छा होगा। शिव शक्तियों के तो बहुत स्वरूप हैं संसार में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग देवियां हैं, एक राज्य की भी देवी है तो गांव की भी देवियां हैं, है ना, गांव की देवियां, हर गांव में एक देवी का मंदिर मिलेगा, ये इस गांव की देवी है, वो नाराज हो गई तो गांव में गड़बड़ हो जाती है, देवियां नाराज भी जल्दी होती है, यहां की देवियां तो संतुष्ट हैं पर वो देवियां नाराज जल्दी हो जाते हैं, नारियल नहीं चढ़ाया, बस नारियल से ही प्रसन्न है देवियां। मैं भी सोचता हूँ नारियल में क्या ताकत है भाई, मैंने भक्ति आदि नहीं की, मुझे पता नहीं, जिन्होंने भक्ति की वो ज्यादा जानते हैं, श्रीफल कहते हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा, तुम्हारी इस देवी जो है, तुमने तो उसको छोड़ा हुआ 50 साल से, वो रुष्ट है, उस पे श्रीफल चढ़ाओ। मैं कहूँ श्रीफल क्या होता है भाई, कोई फल मिलता होगा? फिर मुझे किसी ने बताया श्रीफल नारियल को कहते हैं। निश्चित करें अपना एक स्वरूप। हनुमान भी बहुत है ना, पंचमुखी भी है, तीन मुख वाला भी होगा, एक मुख वाला तो है ही, गणेश और भी कई हैं, लेकिन ये दो फेमस हैं। आजकल हनुमान का ज्यादा प्रचार प्रसार है और श्री गणेश का भी जहां तहां बहुत ज्यादा है। पहले महाराष्ट्र में होता था, अब चारों ओर फैल गया है। मैं नॉर्थ इंडिया में गया तो देखा वहां भी चालू है अभी। और कौन सा स्वरूप है? महाविष्णु स्वरूप। शिव शक्तियों के तो बहुत हैं, अपना एक स्वरूप सामने लाओ, ये मैं हूं। उसके बारे में भी सुंदर चिंतन, देखो मेरे इस स्वरूप के द्वारा द्वापर युग से भक्तों की पालना होती आई है, इस स्वरूप के द्वारा अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती आई है, विघ्न नष्ट होते आए हैं, जो मांगा वो मिल गया, किसके रोग मिटे, किसके बच्चों को बुद्धि मिली, किसकी समस्याएं समाप्त हुई, ये सब हमारे द्वारा होता है, ये मैं हूं। चौथा स्वरूप हमारा ब्राह्मण, ये भी बहुत पावरफुल स्वरूप है। इस स्वरूप में हम संपूर्ण पवित्र हैं। देवियों के चेहरों में देखो, बाबा ये बहुत सिखाया करते थे शुरू में, नैनों में स्नेह, बहुत कल्याण की भावना। कोई भी भक्त निराश होकर मेरे मंदिर द्वार से वापिस न जाए, चेहरों को देखते ही पवित्र फीलिंग, पवित्र वाइब्रेशंस, ये मेरा स्वरूप है। दाता सदा, पालना करने वाले और दाता, चिंतन आवश्यक है। मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण, अपने ब्राह्मण स्वरूप के बारे में भी बहुत अच्छा चिंतन। इस जीवन में वो सब कुछ देख लिया जो चारों युगों में कभी नहीं देखा जाता। प्रभु पालना का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ, स्वयं भगवान ने आकर पढ़ाया, पढ़ाया माना सारे रहस्य खोल दिए, जो उलझी हुई गुत्थियां थी, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं था द्वापर युग से अब तक, एक एक लाइन में बाबा ने उत्तर दे दिया। बहुत बहुत भाग्यवान हूं, बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठा दिया है। कहां एक माता ग्रस्त में दो बच्चों की माता, और उसे क्या कह दिया के तुम जगत माता हो, पालना करो। ऊंचा उठाया हमारा स्पिरिचुअल लेवल। फिर फरिश्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वरूप है हमारा। अपने सामने अपने फरिश्ते स्वरूप का चित्र बनाएं, बिल्कुल जैसा मैं ऐसा ही सामने, लाइट का शरीर, मस्तक में चमकती आत्मा, अंग अंग से फैलता हुआ सफेद प्रकाश। इस स्थिति में भी मैं संपूर्ण पावन हूं, डबल लाइट हूं, बंधन मुक्त हूं, आकर्षणों से परे हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, निरंतर परमात्म छत्र छाया के अंदर हूं, ये मैं हूं। फिर अपना वो स्वरूप देखने लगेंगे। सोने से पहले ये करके सोएंगे, एक दो तीन बार योग इसी को बना दो। जब से बाबा ने ये कहा ना एक मास पहले की मुरली में, योग उनका नहीं लगता जो अपना रूप नहीं बदलते, याद है? जैसा रूप बाबा का वैसा ही रूप तुम्हारा, बदलो इसको। तो हमारे दो रूप बदले जाते हैं, आत्मा और फरिश्ता। तो इससे बहुत अच्छा योग लगेगा, ये सबको अनुभव होगा। उठते ही फिर इन्हीं सुंदर विचारों में सोएंगे तो क्या फायदा होगा? सारे दिन का बुद्धि पर, मन पर कोई भी बुरा इफेक्ट यदि है वो उतर जाएगा। किसी के शब्द बार बार घायल कर रहे हो, भारी कर रहे हो, थोड़ा खुशी को छीन रहे हो, वो समाप्त हो जाएंगे। हमें उनको समाप्त करके ही सोना है। जो आज के इस बुरे इफेक्ट को समाप्त करके नहीं सोते, क्या नुकसान होता है? मोटा नहीं, हम सूक्ष्म बात कर रहे हैं। उसकी सूक्ष्म बैड एनर्जी हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में समा जाती है। उसको निकालने के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसका इम्पैक्ट, उसका सूक्ष्म असर दिखाई देगा जीवन पर। ऐसा बहुतों ने कर दिया है जीवन में, बहुतों ने क्या, सबके साथ हो गया कि द्वापर युग से जो भी दबाव आत्मा पर, मन पर पड़े, रोज नहीं पड़े, द्वापर में रोज नहीं पड़ते थे, कभी कभी, उसको खत्म करने का किसी को तरीका आता नहीं था। उसका सूक्ष्म अंश सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में समा गया। वो अब तक काम करता आ रहा है, वो अब एक्टिव हो जाता है कभी कभी। इसलिए अब हमें, जब हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, रोज के किसी भी बुरे इफेक्ट को समाप्त करके ही सोना है। पसंद है? बाबा के पास भी जाएंगे। मैंने पहले भी एक बात कही थी, यहां बहुत अच्छे अभ्यास होंगे, अनुभव होंगे। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, यहां से हमारी दिनचर्या की शुरुआत हो। जैसे आजकल मेडिकल वाले डॉक्टर कई बैठे हैं, नेचर क्योर वाले विशेष आयुर्वेद वाले ये सिखाते हैं कि दिन की शुरुआत खाने की जो शुरुआत है ना वो भारी खाने से ना हो। ये नहीं आपने नाश्ते का टाइम हुआ तो थेपले ही खाए, हल्के भोजन से हो, फ्रूट से हो, फिर खाओ थेपले आदि पूरी आदि फिर खाओ। लेकिन अगर शुरू में ही भारी खा लिया तो देह पर उसका बुरा इफेक्ट होगा। ऐसे ही हमारी दिनचर्या की शुरुआत प्रभु मिलन से हो, आंख खुली बाबा गुड मॉर्निंग, और जैसे ही हमने बाबा को गुड मॉर्निंग किया तो बाबा का प्यार भरा और वरदानी हाथ हमारे सिर पर, इसको एंजॉय करेंगे बहुत अच्छी तरह। दूसरा हम बाबा को नमस्ते करते हैं कब बोलो? दूसरा मुरली के अंत में। तो ये भी आदत न पड़ जाए, कईयों को बोलने की आदत पड़ गई है ना, बाबा बोलता है हम भी बोल देते हैं, बस पूरा हो गया काम। लेकिन हम चलें फिर से ऊपर और सामने बाबा को जाकर फिर गुड मॉर्निंग और नमस्ते करें, और दूसरा विजन बनाएं कि बाबा ने अपनी हजार भुजाएं हमारे सिर के ऊपर फैला दी और कहा बच्चे तुम अकेले नहीं हो, सारा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका अनुभव होता जाएगा। तीसरा समय आएगा रात को गुड नाइट, अब फिर ऊपर जाकर गुड नाइट करना है, और फिर तीसरा विजन बनाना है कि बाबा ने हमें गले से लगा लिया, और बाबा से के गले से जब हम लगेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, प्यार के सागर से मिले हम, शांति के सागर ने हमें गले से लगा लिया, सर्वशक्तिवान ने हमें गले से लगा दिया, तो वो है ब्लोटिंग पेपर, याद है ना, बस गले से लगाते ही सोख लिया सब कुछ हमारे तन मन का, इस संकल्प के साथ के बाबा ने सोख लिया है। हम सोएंगे और पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, तीन बार कर लें ताकि फुल उसमें आ जाएं हम। पहली बार केवल याद करेंगे पांचों स्वरूपों को, दूसरी बार चिंतन के साथ याद करेंगे, तीसरी बार वो स्वरूप हमारा हो जाएगा। सवेरे आंख खुलते ही फिर जब हम बाबा को गुड मॉर्निंग करें, फिर जिनको अच्छा योग लगाना है पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। आज से ये शुरू करेंगे और इसका इफेक्ट देखेंगे योग अभ्यास पर कितना सुंदर होता है, बाबा से कितनी सुखों की फीलिंग होती है और स्थिरता कितना लंबा समय चलती है, एकाग्रता लंबा समय चलेगी। बस बाबा के पास बैठे हैं हम या बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है या सूक्ष्म लोक में जाके बाबा से बातें करेंगे, उनको थैंक्स देंगे, तो लक्ष्य बना लेना है कि रोज अमृत वेले आत्मा चार्ज हो जाए, मन आनंदित हो जाए। ऐसे ही हम आए और योग करने गए थे, वे योग करके आ गए, ये नहीं, आत्मा आनंदित होकर उठे। पसंद है सबको ये करना? आज रात से और कल से शुरू करेंगे, इवनिंग टाइम भी करेंगे, इस टाइम बहुत अच्छे अनुभव होंगे इसके। मुरली से पहले जो योग में बैठते हैं वो बैठ के ये अभ्यास करें, कुछ दिन इसको अच्छी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये नेचुरल होगा और ये हमारा स्वरूप निर्माण हो जाएगा, और आने वाले समय में संसार के लोग हमारे इस स्वरूप को देख पाएंगे, क्योंकि संसार अट्रैक्ट करना है हमें शिव बाबा की ओर, सबको बाबा से जोड़ना है हमें, ताकि सब अपने परम पिता से जुड़कर अपना मुक्ति का अधिकार तो ले लें। जीवन मुक्ति वाले अलग, पर मुक्ति तो सबको चाहिए। तो जब तक हम इन स्वरूपों को धारण नहीं करेंगे, आत्माएं हमें स्वीकार नहीं करेंगी। और हमें स्वीकार करना माना बाबा से जुड़ना। देखो, आप सब जानते हैं संसार के दो बड़े धर्म क्रिश्चियन और मुस्लिम, दोनों ही बहुत बड़े हैं। फरिश्तों में विश्वास करते हैं, फरिश्तों की बात को वो इंकार ही नहीं कर सकते। अगर हम लंबा काल फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करते होंगे तो हमारे वाइब्रेशंस, हम मन के द्वारा उनको संदेश देकर उन्हें मुक्ति का वरदान दिला सकेंगे। उन्हें फील होगा कि फरिश्ते हैं, हमें कोई मैसेज दे रहे हैं, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तीन सुंदर धारणाओं पे हम आपका ध्यान दिलाते हैं। इसको कहा गया तीन सी, सी एबीसी सी। पहला, नो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना नहीं। दूसरे की आलोचनाओं में समय नहीं बिताना है। दूसरा, नो कंपैरिजन, तुलना नहीं। तीसरा, नो कंप्लेंट्स, कंप्लेनिंग नेचर, दूसरों की शिकायत करते रहना, अपनी भी शिकायत करते रहना, इन तीनों से हमें बचना है। आलोचना पे ध्यान दें हम। क्या हमें आलोचना पसंद है? हमने गलत काम भी कर दिया हो ना, तो भी हम क्या चाहते हैं? अब लोग कुछ कहें नहीं, गलती तो हो गई। लेकिन अगर चार लोग कहने लगे, तुमने क्या किया, तुम इतने अच्छे ज्ञानी, इतनी अच्छी सेवा करते हो, इतने साल से समर्पित हो, तुमने भी ये कर दिया, तो हमें कितना बुरा लगता है। क्रिटिसिज्म, बाबा ने इन तीनों धारणाओं पर बहुत ध्यान दिलाया। दूसरे को क्रिटिसाइज करना माना उसकी खुशी को भी छीनना और उसमें जो चेंज करने की शक्ति है उसको भी दबा देना। हर व्यक्ति में चेंज करने की शक्ति भी है और हर आत्मा स्वयं को चेंज करना भी चाहती है। लेकिन यदि किसी को आलोचनाओं का बहुत सामना करना पड़े तो कई लोग इससे निराश होते हैं, खुशी नष्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें ऐसा बनना है जो अपनी आलोचना सुनकर अपने को करेक्ट करके और पावरफुल हो जाते हैं। करेक्ट करना जरूरी है, जो गलती हुई है उनको चेंज करना आवश्यक है, लेकिन अपने को और पावरफुल बना देना उससे भी अधिक आवश्यक है। इसलिए संसार में बहुत लोग महान बने क्रिटिसिज्म सुनने के बाद, आलोचना ने उन्हें महान बना दिया। अब अपने पॉलिटिक्स में देखो, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबको कितनी गालियां सुननी पड़ी, सुननी पड़ी या नहीं? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बड़े भोले से सज्जन, चुप रहने वाले, लोग क्या क्या कह देते थे उन्हें, सुनते हैं ना लोग। तो हमें पक्का कर देना है, यदि संसार में कुछ महान कार्य करने हैं तो बोलो सुनने के लिए तैयार। जो भी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं उन्हें सुनना पड़ता है ना, अनेक बातें सुननी पड़ेंगी। तो सुनाने वाले भी तैयार हैं, सुनाने वाले कई तैयार हैं, सुनने वालों को भी तैयार हो जाना चाहिए। देखो, लौकिक वालों से, संसार के लोगों से तो बहुत सुनना ही पड़ता है ना, लेकिन अपनों से भी सुनना पड़ता है। इसको अपनी शक्ति बना दो। एक हमारे ज्ञान के ही प्रिंसिपल हैं, बहुत दिन से अपनी जहां उनको दो बड़े स्कूल दिए हुए थे 12वीं तक के, उनको वो हटाना चाहते थे। अभी एक साल से ढूंढ रहे थे कहीं दूसरी अच्छी जॉब मिले तो मैं यहां से छोड़ूं। मिली दूसरी, उनके शहर के पास ही मिल गई, मेरे को फोन करते रहते हैं। तो मुझे बताया अभी एक हफ्ता पहले कि वहां एक तो बिल्कुल वोमेन कॉलेज है, टीचर सब लेडीज हैं, कहा लेकिन बहुत गुटबाजी हैं, मेरे लिए बहुत चैलेंज हैं वहां। मैंने कहा तो तुम घबराते हो क्या? कहा नहीं, मैंने संकल्प कर लिया है। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, ये लास्ट बात इसकी, कि हर चैलेंज को मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना देना है। माता सुने समझी, हर बाधा को एक सुंदर अवसर में परिवर्तित कर देना है। मैंने उन्हें कहा तीन प्रिंसिपल चले गए यहां से एक साल में ही। मैंने कहा तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें ऐसा करना है कि आने वाले प्रिंसिपल्स के लिए भी एक मार्ग तैयार करके जाओ। हो सकता है ना, हम सभी के पास स्पिरिचुअल पावर है, हम अपनी सद्भावनाओं से दूसरे को एनकरेज करके, उन्हें अप्रिशिएट करके, उनकी योग्यताओं को यूज करके, यही तो बाबा ने सिखाया ना, दूसरे की योग्यताओं को यूज करो, किसी को रिजेक्ट ना करो, एक्सेप्ट करके एक यूनिटी बना दो, यूनाइट कर देना सबको। तो वो बहुत अनुभवी हैं, ज्ञान में हैं बहुत समय से, काहे बहुत अच्छी बात है। दूसरा, नो कंपेरिजन, तुलना। मनुष्य दूसरे से तुलना बहुत करता है, दूसरे को बहुत देखता है, और जो दूसरे को देखता है वो विचार करेंगे गहराई से, एक तो वो अपने को देखना भूल जाता है, लेकिन वो अपनी इनर पावर्स को, अपनी आंतरिक योग्यताओं को भी नहीं पहचान पाता। इस पे ध्यान देंगे सभी, जो दूसरों को देखने में लगे हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से भटक गए हैं, वो अपने अंदर की योग्यताओं को विकसित भी नहीं कर पाते, उनकी सारी एनर्जी उसमें लगी रहती है, इसलिए तुलना नहीं। देखो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं लौकिक में, क्या वो उन स्टूडेंट्स से तुलना करते हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं? स्टूडेंट बैठे हैं ना कहीं, भाई ये तो क्लास में जाता ही नहीं, घर से आता है कॉलेज जाने के लिए, जाता कहीं और है, हम भी ऐसा ही करें, सोचते हैं अच्छे स्टूडेंट, नहीं वो नहीं आता ना आए। हमें अपने कैरियर को बहुत सुंदर बनाना है, हमें उसको थोड़ा ही फॉलो करना है। हम भी दूसरों को देखें ही नहीं, अपना अपना महान लक्ष्य निश्चित कर दें, उस लक्ष्य के प्रति अपने को डेडिकेट कर दें, समर्पित कर दें, उस लक्ष्य को पाने के लिए कुर्बान हो जाएं, तो बाकी सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। बाबा सिखाते आए, तुम चलते चलो, साइड के सीन पीछे जाते जाएंगे ना, साइड सीन में जो भटक जाते हैं उनको देखने में रुक जाते हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है। इसलिए तुम निरंतर आगे बढ़ो, तीव्र गति से आगे बढ़ो, ये साइड के सीन सभी पीछे जाते जाएंगे। तुम सबको छोड़ के आगे निकल सकोगे, लेकिन ये शर्त है निरंतर चलते चलो तीव्र गति से। नो कंप्लेन, कंप्लेनिंग नेचर नहीं, ये भी बहुत खतरनाक है, इससे संगठन में शत्रुता बढ़ जाती है। और हमें याद यही रखना है कि हमें शत्रुओं की संख्या नहीं बढ़ानी है, किनकी बढ़ानी है? मित्रों की, क्योंकि हम एक श्रेष्ठ लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अनेक आत्माओं का स्नेह और सुभावनाएं भी हमारे साथ हों। क्या समझते हैं सभी शांतिवन वाले? हम लक्ष्य को तभी पा सकते हैं जब अनेक आत्माओं की सुभावनाएं और स्नेह हमारे साथ हो, है या नहीं? कईयों को छोटी सी प्रॉब्लम आती है संगठन में। आजकल जो विज्ञान ने हम सभी को बड़ी सुविधाएं दी है ना, उसका कई लोग मिसयूज करते हैं कि तीन लोग एक ही कमरे में साथ रहते हैं। एक को सवेरे उठने का बहुत शौक है, दो रात के 1 बजे तक फोन करते हैं, वो तो सवेरे उठेंगे नहीं, वो तो 2 बजे सोएंगे और 9 बजे उठेंगे। ज्ञान योग की छुट्टी तो कठिनाई होती है ना। सभी ध्यान दें इस बात पर। मैं सभी को जो छोटे हैं उनको सावधान करना चाहता हूं, बिना ज्ञान योग की शक्ति के माया को जीता नहीं जाएगा। वो जाने वाले हैं सब ऐसी आत्माएं जो रात के 1-2 बजे तक फोन में लगे हैं, वो जाने वाले हैं। बुरी बात नहीं कह रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। सबको बचना है इस माया से। बाबा ने जो मर्यादाएं हमारे लिए बनाई हैं वो बड़ी कल्याणकारी हैं। टाइम पे सोना, सवेरे उठना, टाइम पे खाना, दूसरों को सुख देना। अभी एक जो बेचारा साथ सो रहा है वो परेशान हो रहा है, बाबा से कह रहा है कब इनसे मुक्ति मिलेगी बाबा मुझे, कहेगा या नहीं? तो अकल्याण होता है आत्माओं का, बहुतों का हो गया है, बहुतों का हो रहा है। मर्यादा बहुत ध्यान देना है। मैं लास्ट में अब आप सबको फिर सावधान कर देता हूं। पता नहीं मैं ही सावधान करता हूं इस बात के लिए और कोई नहीं करता है, कोई बुरा ना माने। हमारा ये समय संगम युग का, परीक्षाओं का समय चल रहा है। करते थे, अब वो करते थे ना, अभी होते तो ज्यादा करते। जगदीश भाई, जैसे सेवा प्रारंभ होने से पहले यज्ञ एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरा था, बेगरी पार्ट, खाने पीने को भी कुछ नहीं रहा। सोचो भगवान जो दाता है उसके बच्चों के पास कुछ नहीं है। लोग सोचते थे क्या हो रहा है, बाबा है भी या नहीं, लेकिन वो परीक्षा ले रहा था बाबा, ताकि अग्नि में तप कर शक्तिशाली आत्माएं बाहर निकलें, कच्चे जाएं। ऐसे ही अब ये 3-4 साल परीक्षाओं के साल हैं। इसमें कई लोग पलायन कर सकते हैं जो कच्चे हैं, जिन्होंने ज्ञान योग पे ध्यान नहीं दिया, वो विदाई ले सकते हैं। विदाई लेना क्या, बाबा को विदाई दे सकते हैं। इसलिए माया के हर रूप को पहचान कर अपने को शक्तिशाली बनाना है, प्रोटेक्ट करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा भी है लेकिन मनुष्य के लिए श्राप भी है, बहुतों के लिए श्राप बन गया है। युवा पीढ़ी के लिए तो मैं कहूंगा वरदान, 5% के लिए, 95% के लिए अभिश्राप। माताएं रोज आती हैं मेरे पास कष्टों को लेकर, हमारे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, नेट से मानसिक परेशानियां हो रही हैं अनेक युवकों को। इसलिए हमें इससे बचना है। एक और तो व्यसनों में युवक जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्यसन तो इंटरनेट का है, इसमें गंदगी बहुत है। तो इस परीक्षाओं के काल में हम सभी फुल पास होकर बाहर निकलें, माया जीत होकर बाहर निकलें, फिर ऐसी आत्माओं के द्वारा होगी बाबा की जय जयकार। तो जय जयकार से पहले ये भी ड्रामा का प्लान है, कच्चों को जरा विदाई दे देना, ताकि कोई ये ना कहे जय जयकार में कि भगवान के बच्चे ऐसे भी होते हैं क्या। तो जो सचमुच भगवान के बच्चे हैं उन्हें उसका स्वरूप दिखाना ही है। लास्ट बात, मुझे एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं सुनी पढ़ी आजकल में, मुझे बड़ी अच्छी लगी आप सबके सामने, कि देखो प्रकृति में भी साल में एक बार पतझड़ होती है ना। हमारे यहाँ तो खूब सीन दिखते हैं, अब ऊपर से नीचे आओ पतझड़, सूखा लगता है सारा पहाड़ सूखा, किसी पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं, और फिर नए पत्ते आते हैं सुंदर। एक साल में प्रकृति भी अपने को बदलती है, हमें भी बदलना है अपने को, इसको अपना एक नेचुरल संस्कार बना दें कि हम अपने को बदलते चलें। हम तो प्रकृति के मालिक हैं, मालिक बदलेंगे तो प्रकृति तेजी से परिवर्तित हो जाएगी, सुखदायी हो जाएगी। तो सभी इन तीन धारणाओं पे बहुत ध्यान देंगे, ये हमारी चीजें नहीं हैं। जन्म जन्म दूसरों को देखते आए, अब अपने को देखेंगे। सारा संसार तुलना में ही तो लगा हुआ है, हम नहीं, हम तुलना करेंगे किससे? बाबा के संपूर्ण स्वरूप से जो हमें अपनाना है। कितना अंतर रह गया है ये तुलना और आलोचना आदि, ये छोटी चीजें हैं। शिकायत आदि करना ये छोटी चीजें होती हैं। इन सब में वो लोग लगे रहते हैं जिनके जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं होता। इसलिए समय हमारी इंतजार कर रहा है। सूखा पड़ गया है संसार में, स्थूल में भी सूखा पड़ा हुआ है, खुशी सुख शांति प्रेम का भी अकाल पड़ता जा रहा है। हमें इस संसार में पुनः हरियाली लानी है। आज थी ना बाबा की मुरली, कांटों का जंगल, आग लगेगी इसको। तो सभी बहुत अच्छा योग करेंगे ताकि हमारे योग के वाइब्रेशंस ब्राह्मण परिवार को भी जाएं, संसार को भी जाए। रमेश भाई को भी ऑपरेशन हो गया है, पता चला ना आप सबको, गिर गए थे, चोट लग गई। अब हम ये योग उनको और दादी जानकी को समर्पित करेंगे। दोनों को जो भी शारीरिक कष्ट है, कोई पेन न हो, हीलिंग तो हो ही जाएगी अच्छी, लेकिन पेन न हो। तो चलें अब सभी परम धाम में, पावरफुल योग करेंगे। 5-7 मिनट हैं हमारे पास। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे मैं बाप समान, शक्ति संपन्न, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं और फिर सारे संसार में फैल रही हैं।